ना जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इस मोशन के खिलाफ बात की थी, यानी कि वो नहीं चाहते टू रिकग्नाइज द सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट। तो ऐसे है आज जनाब, आज का दिन 1 अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑन्टेरियो के अंदर जो मिनिमम वेज है वो अब बढ़ गई है पर आवर, और वेज जो है वो कह रहे हैं ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट के वो इन्फ्लेशन की वजह से के बिल्कुल साथ वो जो है वो इट इज टाइड टू इन्फ्लेशन। ये जो है अब आपकी सैलरी जो आपको बेसिक मिल सकती है वो पहले थी $16.55 पर आवर और अब ये हो गई है $17.20 पर आवर, विच इज अ 3.9% इंक्रीज। ये रेज जो है ये इंक्रीज करेगी आपकी एनुअल सैलरी के अंदर, जो बेचारा बहुत ही लो वेज वर्कर है उसकी सैलरी में एनुअली 1355 मोर अगर वो 40 आवर्स पर वीक काम करता है। 2023 में ऑन्टेरियो ने ये कहा था कि 935,600 जो वर्कर्स हैं वो अब हैं और वो अर्न करते हैं बहुत ही कम, इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से बहुत ऊपर चली गई है, तो हम 2024 अक्टूबर में फॉल में हम इनको रिवाइज करेंगे। तो अब आप जो है ये इतना ये जो लो वेज में आते हैं कैटेगरी में लोग वो ये आप 17.20 पर आवर कमा सकेंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट्स जो मिनिमम वेज के ऊपर होते हैं एंड दोज वर्कर्स हु आर अंडर 18 जो कि 28 आवर्स पर वीक काम करते हैं और लेस, उनको अब 16.20 पर आवर मिलेगा अप फ्रॉम 15.60 पर आवर। इसी तरह जो हंटिंग फिशिंग विल्डरनेस गाइड्स जो हैं उनको अब वो अब बनाएंगे $86 अप फ्रॉम $82.85 और अब ये अर्न करेंगे 172.05, प्रीवियसली ये अर्न कर रहे थे 165.75 जब ये 5 आवर्स पर डे काम कर रहे थे। इसी तरह जो कॉल सेंटर एम्प्लॉयज हैं, सीमस्ट्रेसेस हैं, वो अब उनको पे किया जाएगा 18.90 पर आवर अप फ्रॉम 18.20 पर आवर। इसी तरह ऑन्टेरियो कह रहा है कि अब हम जो है सेकेंड हाईएस्ट प्रोविंस बन गए हैं फॉर मिनिमम वेज इन कनाडा, जस्ट बिहाइंड ब्रिटिश कोलंबिया जहां पे के मिनिमम वेज 17.40 पर आवर है। और ये जो मिनिमम वेज रूल है ये अप्लाई करेगा 30,000 एम्प्लॉयज को और जो है इसमें काफी ज्यादा जो है इनको इनका उछाल आएगा इसके अंदर, यानी कि ये अब जो है ज्यादा पैसे कमा सकेंगे।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
अच्छा जनाब, थाउजेंड्स ऑफ डॉक वर्कर्स जो हैं यूएसए के अंदर वो अब स्ट्राइक पे चले गए हैं और कनाडा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको पता ही है कि अगले महीने ही November 5 को जो है वहां पे इलेक्शंस आने वाले हैं और बड़ा ही बिजी हॉलिडे सीजन भी चल रहा है, लेकिन यूएस के अंदर इंटरनेशनल लॉन्गशोर मैन एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं जो कि तकरीबन 14 मेजर पोर्ट्स को ऑपरेट करते हैं इन ईस्ट एंड गल्फ कोस्ट की तरफ, उन्होंने जनाब बिल्कुल हॉल्ट कर दिया है सारे का सारा काम और ये जो आ रही थी कंटेनर ट्रैफिक फ्रॉम मेन टू टेक्सस ये भी बिल्कुल जो है वो खत्म हो गई है। जो फर्स्ट सच शटडाउन जो है इन्होंने किया है 50 इयर्स में, और बात वही है कि वेजेस नहीं है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है। बाइडन जो है उनके पास ये पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं स्ट्राइक फॉर 80 डेज फॉर फर्दर टॉक्स, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा जी कि वो ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स यूनियन और एम्प्लॉयर्स जो है वो बात कर रहे थे लेकिन कुछ भी उसमें से नहीं निकला और ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर कर गया था कल यानी कि मंडे को। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडन और कमला हैरिस बहुत क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कैनेडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि $3.6 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्रॉस करते हैं यूएस कनाडा बॉर्डर एवरी डे और ये यूएस पोर्ट्स का जो शटडाउन है ये अब थ्रेटन कर रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स इन कनाडा, तो काफी जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं कनाडा हमारे की। ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उन्होंने आज क्लेम किया है कि उन्होंने ओवर 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं इसराइल के ऊपर और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे हिजबुल्ला के चीफ थे हसन नसरल्ला उनकी डेथ का हमने बदला लिया है। और इसके अलावा जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया को मारा गया था अर्लियर दिस ईयर उसका भी हमने बदला लिया है। IRGC के जो कमांडर अब्बास निल्फो रोशून जो थे उनको भी जो मारा था उसका भी हमने बदला लिया। उन्होंने कहा जी कि अब हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया है अभी के लिए, तो हम जो है और ज्यादा इनके ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। इनकी जो स्ट्राइक थी वो थी तल अवीव के ऊपर और की जो इनके इसराइल के और लोकेशंस थे वहां पे। तेहरान का जो मिशन है टू यूनाइटेड नेशंस, उसने ये डिस्क्राइब किया कि ये हमारा ईरान का लीगल, रैशनल और लेजिटिमेट रिस्पांस है, जो कुछ ये हमारी सॉवरेनिटी को रोनते हुए हमारे मुल्क के अंदर आके हमारे लोगों को मार रही थी ये ज़ायनिस्ट रेजीम, तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। तो इसलिए ईरान अब जो है समझता है कि फॉर नाउ द इशू हैज बीन रिजॉल्व। इसके होते हुए अब जब इसराइल के ऊपर इतने अटैक्स इन्होंने किए हैं, तो बाइडन साहब ने आज जो है ऑर्डर दे दिया है यूएस मिलिट्री को कि आप इसराइल के डिफेंस के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, और जितने भी इरानियन मिसाइल्स अब आएंगे इसराइल को टारगेट करने के लिए, उनको आपने शूट डाउन करना है। इसके अलावा बाइडन और हैरिस जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं व्हाइट हाउस के जो सिचुएशन रूम है, उससे सारी की सारी सिचुएशन, चीजें इतनी भड़क गई हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो एंटोनियो गुतरस, उन्होंने फौरन सीज फायर के लिए कहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने इससे पहले कहा था कि जी ईरान का हमें एक बड़ा खतरा है, और उन्होंने बातचीत की थी पेंटागन के चीफ लॉयड ऑस्टन से। इजरायली मिलिट्री जो है उसने कहा जी कि हम अब ग्राउंड इन्वेजन लेबनान में शुरू करने लगे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टारगेटेड होगी। हालांकि हफ्तों से इजरायली मिलिट्री को कहा जा रहा है और इजरायल को कि डी एस्केलेट करें, क्योंकि हजारों ही सैकड़ों ही जो लेबनीज हैं वो आपके अटैक्स में उनकी डेथ हो चुकी है। और पेंटागन ने इसके रहते हुए अब चूंकि ये ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने लगे हैं लेबनान में इसराइल, तो पेंटागन ने आज कहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर हम अपनी जो यूएस फोर्सेस हैं उनको अब बूस्ट कर रहे हैं, यानी और अपने ट्रुप्स जो हैं मिडल ईस्ट में भेज रहे हैं। तो बस जनाब इसराइल नू तुसी दबा दब जड़ा उनका साथ देंदे जाओ, और वो जड़ा सारा मिडल ईस्ट उन बर्बाद करेगा। तो माशाल्लाह से यूएई, कतर, बहरेन और सऊदी जो हैं वो बस ट्रेड करते रहे बैठ के, और बस अब देखो जरा इसराइल कैसे ईंट से ईंट आपकी बजाएगा। ये जो है फॉरेन सेक्रेटरी जो है इंग्लैंड के डेविड लेमी, उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है अब चार्टर प्लेन्स जो है वो लेबनान में भेज रही है, ताकि वहां से अपने जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनको वहां से निकाला जा सके, क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है और वो अब और ज्यादा खराब हो सकती है। ब्रिटिश नेशनल्स, उनके स्पाउसेस, पार्टनर्स, बच्चे अंडर 18 सब एलिजिबल हैं ये फ्लाइट लेके, और जो वल्नरेबल पीपल हैं वो, उनको कहा गया है कि कल वेंसडे के दिन जो है प्लेन वहां से उड़ेगा और सबको लेके इंग्लैंड वापस आएगा। इसके साथ साथ बहुत मेजर जो एयरलाइंस हैं उन सब ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं सस्पेंड कर दी हैं टू बैरूत एंड टेल अवीव। उसमें है एमिरेट्स एयरलाइंस, एतिहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, साइप्रस एयरलाइंस, इथियोपियन, ब्रिटिश एयरवेज, पेगासस, टर्किश, कतर, एयर फ्रांस, जर्मनीज, लुफ्थेंसा, इन सब ने अपनी फ्लाइट्स कर दी हैं सस्पेंड। स्टेट डिपार्टमेंट जो है यूएसए का, उसने अपने एम्प्लॉयज को और बैरूत के अंदर जो उनकी एम्बसी है उसमें फैमिलीज को कहा है कि फौरन लेबनान आप छोड़ दें। इसके अलावा कनाडा की जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है वो तो बहुत दिनों से ही कह रहा था, बल्कि वो कह रहे हैं जी कि अक्टूबर 2023 से ही हम कह रहे थे लोगों को कि लेबनान को छोड़ दें, गवर्नमेंट के ऊपर आसरा ना करें कि वो आपके लिए डिपार्चर और इवैक्यूएशन करेगा, ये सिक्योरिटी अगर सिचुएशन खराब हो गई तो आपका लेबनान से निकलना मुश्किल हो जाएगा, फौरन छोड़ें। आज फिर ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा है कि बिल्कुल लेबनान को ना ट्रैवल करें, बल्कि वहां से फौरन जो है निकलने वाली बात करें। इसके साथ साथ जनाब ग्रीस के अंदर लगी हुई है वाइल्ड फायर्स, और वहां पे बहुत बड़ा इलाका जो है उसके अंदर बेतहाशा इंटेंस फायर्स लगी हुई हैं, और सैकड़ों लोग जो हैं उनकी डेथ्स की खबरें जो है आ रही हैं। फायर फाइटर्स इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सेवरल विलेजेस जो हैं आसपास, वो जो कॉरिनथ का जो एरिया है 140 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एथेंस जो उनका कैपिटल है उससे उनको निकाल रहे हैं। बर्निंग जो है वो जारी है, क्योंकि बहुत फियर्स विंड्स जो है वहां पे चल रही हैं, और सारे का सारा इलाका जो है यानी कि जो कैपिटल है वो स्मोक से भरा हुआ है। इससे पहले कई घर और एक चर्च जो है कंप्लीटली जल गए हैं इस आग की वजह से। जैसे कि सदर्न यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वहां पे भी बहुत सारी समर में डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर्स आई थी अमिड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी तरह जो ग्रीस का भी 2024 जो रहा ये हॉटेस्ट एवर समर रहा। पिछले कुछ महीनों से ग्रीस के अंदर 4,500 वाइल्ड फायर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जल रही हैं किसी ना किसी जगह पे, और उसको वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो बुझ नहीं रही हैं। फॉर्मर इरानियन प्रेसिडेंट जो हैं जनाब महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने आज बिग 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 रेवलेशंस किए हैं, इतने बिग रेवलेशंस किए हैं कि आपकी भी आंखें जो है चौंक जाएंगी। एक तरफ तो हम देखते हैं ईरान का किरदार है कि वो इसराइल को जो है वो धमका रहा है और कह रहे हैं आगे मत बढ़ना, आगे मत आना, और उसके साथ साथ आज इन्होंने रेवलेशंस जो किए हैं जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हेड ऑफ ईरान टॉप सीक्रेट सर्विस हिमसेल्फ वॉज एन अंडर कवर मोसाद एजेंट। एक इंटरव्यू ये दे रहे थे सीएनएन टर्क को और उसने कहा जी कि ना सिर्फ ये हेड ऑफ इरेनियन टॉप सीक्रेट सर्विस बल्कि 20 और एजेंट्स जो थे वो भी इसराइल के पेरोल के ऊपर थे और वो बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसराइल को लीक करते थे इंक्लूडिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अहमदीनेजाद ने कहा जी, हालांकि वो खुद एक हार्डलाइन लीडर माने जाते थे, उन्होंने कहा जी कि मोसाद के बहुत सारे मोल्स जो हैं वो अब भाग गए हैं ईरान से और जो है उनके सीक्रेट्स लेके इन 2021 और अब वो सारे के सारे इसराइल में रह रहे हैं। ये शो करता है कि इसराइल कितना डीपली पेनिट्रेट कर जाता है अपने एनिमीज के कंट्रीज के अंदर। इससे पहले जो फ्रेंच पेपर एक था न्यूज़पेपर, उसने भी क्लेम किया था कि ईरान के अंदर मोल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इसराइल को सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उन्होंने ही टिप ऑफ दिया था कि हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला कहां पे हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इसराइल सेवरल इरानियन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने पहले भी एक इससे कहा था कि मोसाद जो है वो ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गई है। फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने कि सर्व किया एज एडवाइजर टू फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन रूहानी, उन्होंने भी एक दफा कहा था 2022 में कि सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं तेहरान में वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट्स जो थी लंदन बेस्ड पर्शियन लैंग्वेज जो न्यूज साइट थी मनोटो उसके अंदर भी ये सारे डिटेल्स जो हैं वो आए थे। पाकिस्तान के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है जी कि मुल्क के अच्छे के लिए आप सब मिलकर काम करो। एक टीवी शो में वो बात कर रहे थे और उन्होंने ऑपोजिशन को कहा कि भाई अगर मुल्क को इस सख्तियों से और चैलेंजेस से आपको निकालना है और मुल्क में आपने नेशनल स्टेबिलिटी लानी है तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, सिस्टम को जो है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हजारों ही केसेस जो हैं वो पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, इसीलिए हम प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आना चाहते हैं और ये कोई नई चीज नहीं है जो हम ला रहे हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि साइन किया गया था 2006 में जिसको के इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान ने भी जिससे एग्री किया था, ये उसका हिस्सा थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका ये स्टांस था कि ये कंसल्टेशन जो है इनको हॉल्ट किया जाए इसके ऊपर। और इसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि इरफान सिद्दीकी साहब ने ये जो अनाउंसमेंट किया कि फाइनल डेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस जल्दी दी जाएंगी, तो इसहाक डार साहब ने कहा जी मुझे इस सिलसिले में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इन आर्टिकल 63A रिव्यू केस फेडरल गवर्नमेंट और पीपीपी जो है उन्होंने बैक किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन को जिसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट की मई 2020 की रूलिंग ऑन जो है वो इस पे डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर जो है सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसाइड किया था कि ये जितने भी डिसेंटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट देयर पार्टी डायरेक्टिव्स। और बार काउंसिल कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ओपिनियन है कि वो वोट्स काउंट नहीं किए जाएंगे जो डिसेंटिंग ऑफिशियल्स के होंगे विच इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वल टू इंटरफेरेंस इन इट। इससे पहले आपको पता ही है कि एक लार्जर बेंच जो है लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा वो ये रिव्यू सुन रहे थे। उन्होंने अब नया बेंच फॉर्म किया है विद जस्टिसेस अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने कहा था कि वो इसके लिए अवेलेबल नहीं हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा। डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पे होती हैं, आप इनके पास जाएं जी, बड़ी जबरदस्त डेंटल सर्विसेज ये देती हैं। इनका नंबर है 9058721100 एंड पायल ज्वेलर्स ग्रैंड ओपनिंग के बाद से तो इन्होंने धमाके मचा दिए हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की ज्वेलरी के डिजाइन दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान से लाए हैं। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो असलम भाई को फोन करें ऑन 9057907879 एंड ओपन माइक कैफे। मजे के अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो नासिर शाह साहब कहते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारे पास खाने हैं, हमारे पास आओ। आप इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 4165266800। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है इसके ऊपर आज बात करते हुए बीबी जरदारी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट भारत का जो सेशन हो रहा था क्वेटा में, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पीएमएलएन के इस प्रपोजल के साथ मिलकर काम करेंगे और हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया जाए। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई भी टॉप टू जजेस जो है इसके अंदर बैठने को तैयार हैं तो बिल्कुल ठीक है, हम पिछले 30 इयर्स से ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनको सेटअप किया जाए, एंड दे वर पार्ट ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें क्योंकि बहुत सारी जो पीटीआई की रिजर्वेशन थी कि कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा जो हैं उनको एक्सटेंशन ना दे दी जाए, तो वो कहते हैं कि ऐसा हम नहीं सोचते हैं और गवर्नमेंट ने बहुत दफा चाहा है कि ये अमेंडमेंट बिल लेकर आएं, लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि हमारे पास मैजिक नंबर्स हैं लेकिन है नहीं, वो दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ 13 वोट्स इन नेशनल असेंबली एंड 9 वोट्स इन सेनेट, उसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो सका है। बीबी जरदारी ने कहा कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये बिल्कुल जरूरी हैं टू ब्रिंग क्वालिटी इन जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि ये इसने आम लोगों की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल कर दी है। पंजाब की गवर्नमेंट जो है जी उसने अब लगा दिया है सेक्शन 144(6) इन फैसलाबाद भावलपुर मियां वाली के अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि बहुत ज्यादा हमको ये खबरें मिली हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, और क्योंकि पीटीआई ने कहा था जी कि हम ये इधर जो है प्रोटेस्ट करेंगे मियां वाली फैसलाबाद भावलपुर में कल, तो हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। पीटीआई के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है शेख वकास अहमद, उन्होंने कहा है जी कि हम लार्ज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं मुल्तान मियां वाली फैसलाबाद में 2 अक्टूबर को। पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक पीस और लाइफ जो है उनको और प्रॉपर्टी को सेव किया जाए। सिंध हाईकोर्ट जो है उसने आज फिर से जब केस एडजर्न किया जो कि अपील डाली गई थी मुर्तजा भुट्टो के मर्डर केस में, उसके ऊपर आज सिंध हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी जो यहां पे जस्टिस नीमत फलफुट्टो जो थे उन्होंने कहा कि 2010 से ये केस जो है ये अपील्स जो है ये पेंडिंग है, और आज उन्होंने बहुत ज्यादा खींचा एसएसपी ईस्ट को फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट, और डिफेंस लॉयर्स जो थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि वाजिद दुरानी और राय ताहिर ये जो की एक्यूज्ड हैं ये आज अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सके, तो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि बीमारी और सुप्रीम कोर्ट का असाइनमेंट जो है उसको एक्सक्यूज बना के एब्सेंस कैसे की जा सकती है। और इसके अलावा उनको बताया गया कोर्ट को कि जो एक्यूज चार हैं शाहिद हयात शब्बीर कैम खानी आगा जमील मसूद शरीफ ये सारे जो हैं मर गए हैं, जिसकी वजह से केस जो है आगे नहीं बढ़ सक रहा है और बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज जम्मू और कश्मीर जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके अंदर आज थर्ड फेज के जो हैं वो इलेक्शंस हुए। इस पे बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और कैंडिडेट फॉर गंदरबल और बगड़ाम से उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने कहा जी कि यहां पे बीजेपी जो है वो शायद 10 से 12 सीटें जीतेगी क्योंकि उसने बहुत सारी जगहों से अपने कैंडिडेट्स फील्ड भी नहीं किए हुए हैं। अलबत्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है ये 30 से 35 सीट्स जो हैं यहां पे जो हैं वो जीत सकते हैं। आज जो है 40 असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका आज थर्ड फेज में हुआ है इलेक्शन हुआ है और जो वोटर टर्नआउट रहा वो 65.48 रहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर 415 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 16 सीट्स कश्मीर में है, 24 जम्मू के अंदर हैं, 3.9 मिलियन वोटर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं टू वोट एट 5060 पोलिंग स्टेशंस, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन इन 10 इयर्स एंड आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन अगस्त 2019, और ऑल टुगेदर 90 सीट्स हैं जिसके के ऊपर यहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जनाब जो उनका राजधानी है दिल्ली कैपिटल उसमें फिर से बेतहाशा रेप के केसेस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। वैसे तो इसको कहा ही जाता है इंडिया का रेप कैपिटल, लेकिन अब बहुत ज्यादा और जो हैं केसेस आ गए हैं। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में 4 रेप केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस डाटा 2141 रेप केसेस जो हैं 2023 में आए थे, कंपेयर टू दैट थोड़ी सी कमी आई है लेकिन फिर भी 2084 केसेस जो हैं वो 2022 में किए गए थे। तो ये यानी कि 2022 से 2023 में तो 2.73% का जो है वो राइज आया है, लेकिन अब थोड़े थोड़े केसेस क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है तो उसमें जो है वो कमी आ रही है। उन्होंने कहा जी कि 1393 केसेस 2024 में जो है वो कोट किए गए थे बिटवीन जनवरी 1st एंड अगस्त 31st, जिसका के मतलब है कि ऑन एवरेज 5.73 रेप्स पर डे जो हैं वो हो रहे हैं। इसमें हजारों ही केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो हैं वो दिल्ली के अंदर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अंदर 14,158 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन थे, जिसमें कि अब मुंबई भी शामिल हो गया और मुंबई में 6,176 रेप केसेस। लेकिन जाहिर है कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि ये जो है ये रिपोर्टेड केसेज हैं और बहुत सारे केसेज होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। गोविंदा की आज ब्रेकिंग न्यूज थी, 60 इयर्स उनकी एज है, उनको आज रश किया गया कृति केयर हॉस्पिटल में जुहू के अंदर, क्योंकि अपना रिवॉल्वर साफ करते हुए उन्होंने एक्सीडेंटली अपने आप को शॉट किया। अलबत्ता वो अब ठीक हैं और घर वापस आ गए हैं। उनके मैनेजर जो हैं शशि सिन्हा, उन्होंने अभी न्यूज दी है, उनको 8 to 10 स्टिचेज आए हैं और मुंबई पुलिस ने कहा जी कि अपने ये घर पे थे और इनके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, ये प्लान कर रहे थे कोलकाता जाने के लिए, लेकिन ये साफ कर रहे थे अपनी बंदूक को, लेकिन फिर भी ये चल गई और इनको आई भरल, अब ये ठीक है। और जनाब एक चीटिंग केस जो है अहमदाबाद में डाला गया है, जिसमें कि एक जो बिजनेसमैन है उसको 1.6 करोड़ इंडियन रुपीज के लिए डूब किया गया। जब उसने बक्सा खोला और उसने जब उसमें पैसे देखे तो उसके अंदर जो पैसे थे उसमें गांधी जी की तस्वीर के बजाय अनुपम खेर की तस्वीर थी। तो अनुपम खेर जो अपना प्रोग्राम चला रहे हैं कुछ भी हो सकता है, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया एक्स के ऊपर कि कुछ भी हो सकता है। इन अर्ली मिड 1990s आपको पता ही है कि शाहरुख खान जो थे उनको बॉलीवुड के अंदर एज विलन इंट्रोड्यूस कराया गया था। उन्होंने बैक टू बैक तीन फिल्में डर, बाजीगर और अंजाम में काम किया था एज विलन, लेकिन फिर उसके बाद 1995 में सब कुछ हो गया चेंज और वो बन गए रोमांटिक हीरो और उसकी वजह थी नन अदर देन दिस फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान जो है। लेकिन आज रेवलेशन आए हैं कि वो ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर राज। आदित्य चोपड़ा जो है इससे पहले ये रोल ऑफर कर चुके थे आमिर खान और सलमान खान और इवन सैफ अली खान को, लेकिन जब उन तीनों ने ना बोल दिया तो फिर शाहरुख खान जो हैं उनको ये फिल्म मिली और ये फिल्म ने इनका नाम चेंज कर दिया और इस फिल्म ने 2,500% प्रॉफिट्स कमाए। अरे जीशान कोई शाहरुख खान हमारे की कोई तस्वीर तुम दिखा देते यार, क्या तुम दिखा रहे हो। फॉर्मर बांग्लादेश के जो कैप्टन हैं मुशरफुल मुर्तजा उनके खिलाफ आज FIR जो है वो लॉन्च की गई है और ये जो कंप्लेन है ये सरवर गुलाम चौधरी जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बांग्ला प्रीमियर लीग हैं जिनकी की फ्रेंचाइज है सिलेट स्ट्राइकर्स, उन्होंने आज लोकल पुलिस में कही है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने और पांच और लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं इनको 4.5 करोड़ टका जो है वो दूं फॉर BPL टीम सिलेट स्ट्राइकर्स इन 2023। अभी तक कोई पुलिस ने अरेस्ट तो नहीं किए हैं, लेकिन मुर्तजा साहब ऑलरेडी बड़ी मुश्किलों में है बिकॉज ही वॉज फाउंड अलेजली इन्वॉल्व इन स्टूडेंट अटैक्स इन रिसेंट बांग्लादेश। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो करने वाली जा रही है अपना एक क्रिकेट का फेस्टिवल, जिसके के अंदर उसने बुलाया है पाकिस्तान के जो है टॉप क्लास और T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यूनुस खान को। इसके अलावा उन्होंने बुलाया है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को और फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट फास्ट बॉलर एंड 1999 वर्ल्ड कप विनर डेमियन फ्लेमिंग को। इस मौके के ऊपर जो है लोग इनके साथ तस्वीरें खींच सकेंगे, इनके ऑटोग्राफ्स ले सकेंगे, एंट्री बिल्कुल फ्री है। इन मर्दों के साथ साथ जो है वो ऑस्ट्रेलियन विमेन्स अंडर 19 क्रिकेटर हसरत गिल जो है उनको भी बुलाया गया है। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट महनूर अली, 11 इयर्स उनकी एज है, अपनी ही सगी बहन को सैरिश को उन्होंने अंडर 19 टाइटल में हेड डैनिश जूनियर ओपन में डेनमार्क में हराया और फाइनल में ये पहुंची। और इनकी जो बड़ी बहन है मैविश, उन्होंने अंडर 19 के लिए जो है वो सॉरी अंडर 17 के लिए ब्रॉन्ज जीता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो आसिम खान है उन्होंने फाइनली जीत लिया है शार्लट्सविल ओपन फाइनल और ये इनका पहला PSA टूर वर्ल्ड इवेंट टाइटल है। उन्होंने डिफीट किया UK के निक वॉल को। तो जनाब ये थी
हमारी आज की गर्मा गर्म और खट्टी मीठी खबरें और अब जो है वो आपसे इजाजत लेने का टाइम भी आ गया है। दुआ का सेगमेंट है और फिर हम इख्तिताम आईडी की तरफ जाएंगे। शाजी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, शामिल होने का, और इंशाल्लाह जिंदगी रहें और आप जिंदा रहें तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तमाम सामीन और नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमान साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, मैं आमिर अहमद आपके होस्ट, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूं मैं तुझसे अता मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम दूर रखना, परेशानियां हम को घेरे हुए हैं, परेशानियां हम को घेरे हुए हैं, परेशानियों से पना ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے, میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, دعا مانگتا ہوں.
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM. ہمارے پروگرام کو ٹورانٹو میں سننے کے لیے ڈائل کیجیے 647-872-4900, مونٹریال 514-907-6288. اس کے علاوہ کیلگری, وینکوور, ایڈمنٹن اور ریجائنا کے نمبرز آپ eawaz.com کی ویب سائٹ پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com, لائک کریں فیس بک پیج eawaz, ڈاؤن لوڈ کریں فری eawaz آفیشیل ایپ. Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
Hey, hey. बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो।
Thank you.
में देखती है जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है
Thank you. का सपना सजा दिया, पहली नजर में ही तुझे अपना बना लिया है, यही आरज़ू हर घड़ी बैठी रहो मेरे सामने, मेरी दुनिया है
के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ।
ना मैं तुम्हें सताऊं, ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ।
चाहत ही पूजा हो, मन मंदिर हो, जान मन तो जीवन बन जाएगा। प्यार का तराना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना,
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना।
प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
सपना किसी का,
मैं जिस दिन भुला